بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، کاریکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کے سورہ زحا کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قاری ہیں ہاشم روغنی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحا والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل و دیاوان ہے، سوگند ہے دن کی جب وہ چھا جائے اور رات کی جب اس کا سناٹا چھا جائے، اور ہے پیغمبر، آپ کے پالنہار نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے اپرسن ہوا ہے، اور نشچے ہی پرلے آپ کے لیے سنسار سے اتم ہے، اور شیگر ہی آپ کا پالنہار آپ کو اتنا پردان کرے گا کہ آپ پرسن ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو اناتھ پایا اور شرن نہیں دی، और आपको मार्ग से दूर पाया तो गंतव्य तक नहीं पहुंचाया, और आपको निर्धन पाया तो समृद्ध नहीं कर दिया। अतः अनाथ पर क्रोध न कीजिए और मांगने वाले को न झिड़किए, तथा अपने पालनहार की अनुकंपा का वर्णन करते रहिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज सोमवार है, आजर की 21, दिसंबर की 12 और जमादुल अव्वल की 17 तारीख। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 21 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करेगा। पत्र विभाग के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण, और सभा का अंतिम एवं साप्ताहिक कार्यक्रम होगा सेहत का राज। श्रोताओं, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने फारस खाड़ी की सहयोग परिषद की संयुक्त विज्ञप्ति की भर्सना की। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने चीनी राष्ट्रपति की सऊदी यात्रा को अमेरिका की गलत नीतियों का परिणाम बताया है। यमन के युद्ध में 11,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए या शारीरिक रूप से विकलांग हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ ने तालिबान को चेतावनी दी और कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने चीनी राष्ट्रपति की उपस्थिति में फारस खाड़ी की सहयोग परिषद की संयुक्त विज्ञप्ति की भारत सेना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और कहा कि फारस खाड़ी की सहकारिता परिषद की संयुक्त विज्ञप्ति की हम भर्त्सना करते हैं, और ईरान के शांतिपूर्ण कार्यक्रम से संबंधित जो बातें इस विज्ञप्ति में थी उसे रद्द करते हैं। सऊदी अरब की अगुवाई में फारस की खाड़ी की जो संयुक्त विज्ञप्ति संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, उसमें ईरान के 3 द्वीपों के बारे में भी दावा किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में दावे को हम ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु समझौते और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति कटिबद्ध है और इस चीज की अनदेखी किए जाने को हम रद्द करते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान देश के अंदर से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा और क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में विदेशियों के हस्तक्षेप न करने पर बल देता है, और हम 3 द्वीपों के बारे में बल देकर कहते हैं कि ये द्वीप ईरान के अटूट अंग हैं, और इस संबंध में किए गए दावे की कड़ी भर्त्सना करते हैं।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने आर्थिक सहयोग संगठन के विस्तार की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान की नज़र में इस संगठन का महत्वपूर्ण स्थान है और यही कारण है कि तेहरान ने हर मौके पर इको के सदस्यों के साथ सहयोग के विस्तार पर बल दिया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को आर्थिक सहयोग संगठन इको के विस्तार की 30वीं वर्षगांठ का स्मृति समारोह तेहरान में स्थित सेंटर फॉर पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में आयोजित किया गया, जिसमें इको संगठन के महासचिव और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के अलावा अन्य देशों के राजदूतों और अधिकारियों ने भाग लिया।
शहीद हुसैन जैनाल जादे और शहीद दानियाल रजा जादे के हत्यारे को सोमवार की सुबह सार्वजनिक स्थान पर लोगों के सामने फांसी पर लटका दिया गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 17 नवंबर को ईरान के खुरासान रजवी प्रांत के पवित्र शहर मशहद में एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई थी कि जिसकी वजह से पूरा शहर शोक में डूब गया था। पवित्र नगर मशहद के हुर्रे आमली स्ट्रीट पर मजीद रजा रानवर्दी नामक दंगाई हाथ में चाकू लेकर अचानक से आम लोगों पर हमलावर हो गया। इस बीच सुरक्षा बल के दो जवान उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे कि तभी उसने हुसैन जैनाल जादे पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिया। इस बीच उसको नियंत्रण में करने का प्रयास कर रहे दूसरे सुरक्षा के जवान दानियाल रजा जादे पर भी उसने चाकू से कई वार किए। जब दोनों जवान गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर गए तो आतंकी रहनवर्द वहां से भागने लगा और उसके रास्ते में जो भी आ रहा था वो उन पर चाकू से हमला कर दे रहा था।
अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक साक्षात्कार में चीनी राष्ट्रपति का हालिया सऊदी यात्रा को अमेरिका की गलत नीतियों का परिणाम बताया है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार माइक पोम्पियो ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रियाज यात्रा के संबंध में कहा कि जब हम अपने दोस्तों और भागीदारों के साथ नहीं रहेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और शी जिनपिंग जैसे अपने दुश्मनों को पीछे ढकलने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम इस प्रकार के व्यवहार के साक्षी होंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा समझती थी, किंतु बाइडन सरकार उसके मुकाबले में नर्म रवैया रखती है। माइक पोम्पियो ने इसी प्रकार बाइडन के उस वादे की ओर संकेत किया जिसमें उन्होंने मानवाधिकार का हनन करने और सऊदी अरब की तानाशाही की आलोचना करने वाले सऊदी पत्रकार जमाल खाशुकजी की हत्या के कारण रिया सरकार की आलोचना की थी।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोमवार को बताया कि 8 साल से चल रहे यमन के युद्ध में अब तक करीब 11,000 से अधिक यमनी बच्चे मारे गए या शारीरिक रूप से लाचार हो गए हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली एजेंसी यूनिसेफ ने दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट के पीड़ितों के बारे में कहा, इस संघर्ष का वास्तविक आंकड़ा कहीं अधिक हो सकता है। यूनिसेफ के कर्मचारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा कि हजारों बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों को रोकथाम योग्य बीमारी या भुखमरी से मौत का खतरा बना हुआ है। यूनिसेफ ने कहा कि लगभग 2.2 मिलियन यमनी बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, उनमें से 1/4 5 वर्ष से कम आयु के हैं और अधिकांश हैजा खसरा और अन्य वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों से अत्यधिक जोखिम में हैं।
अफगान बलों ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चमन में गोलीबारी की है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगान बलों की तरफ से बलूचिस्तान प्रांत के चमन जिले में की गई गोलीबारी की निंदा की है और तालिबान सरकार से कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाएं न हों।
अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। काबुल के एक होटल में इस वक्त जबरदस्त फायरिंग चल रही है। होटल के अंदर हथियार बंद हमलावर घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग आरंभ कर दी। हमला होटल में ठहरे विदेशियों पर किया गया है। होटल के एक हिस्से में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये जोरदार धमाका चीनी लोगों के बीच लोकप्रिय गेस्ट हाउस के पास हुआ है। खबर है कि कुछ लोग इस होटल में घुस गए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी आरंभ कर दी।
इराक के स्वयंसेवी बल हश्दुशाबी ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि हम सब कासिम सुलेमानी हैं, यह हमारी पहचान है और यही हमारा नारा भी है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इराक के स्वयंसेवी बल हश्दुशाबी के प्रमुख ने तकफीरी आतंकवादी को दाइश पर मिली जीत की पांचवी वर्षगांठ के मौके पर इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन खुफिया साजिशें कर रहे हैं और कहा कि हम सब अबू मेहदी अल मोहंदिस और कासिम सुलेमानी के देश की रक्षा में व्यस्त हैं। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख फाले अल फैयाज ने आतंकवादी गुट दाइश पर विजय की पांचवी वर्षगांठ के अवसर पर एक भाषण में कहा कि आतंकवाद पर इराक की जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व का स्रोत है।
और अंत में ये समाचार कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित समारोह में भूपेंद्र पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल ने आज फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य दिग्गज नेता मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। हाल में संपन्न हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 में से रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत हासिल की थी। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। सऊदी अरब ने 5 कैदियों को मौत की सजा सुनाई है। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
मिरातुल जजीरा नामक वेबसाइट ने बताया है कि सऊदी अरब ने इस देश में हादसा संबंधी 5 कैदियों की अंतिम सजा पास कर दी है। इस मीडिया ने एक जानकार सूत्र के हवाले से बताया है कि रियाद सरकार ने मोहम्मद अली अशकाक, मंसूर समीर अल हायक, मरजूक मोहम्मद जैफ अल फजल, राद मोहम्मद जैफ अल फजल को मौत की सजा सुनाई है। इन चारों सऊदी नागरिकों को मौत की सजा सुनाए जाने से सऊदी सरकार द्वारा मौत की सजा पाने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। इससे पहले अरब प्रायद्वीप में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली समिति ने एक रिपोर्ट में बताया था कि नाबालिगों के लिए मौत की सजा का सिलसिला जारी है। ये तथ्य इस कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी और सऊदी पेट्रोडॉलर के प्रभाव के कारण मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन और ऊपर से मनमानी फांसी सऊदी अरब में एक सामान्य रोजमर्रा की बात बन गई है। सऊदी अरब ने पिछले 10 वर्षों में फांसी का अपना ही रिकॉर्ड बनाया है और ये एक ऐसी स्थिति में है कि जब उसने 2013 से इस वर्ष अक्टूबर तक 1100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें 990 से अधिक को सऊदी अरब के प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज के शासनकाल के दौरान फांसी दी गई। पर्यवेक्षकों का मानना है कि मोहम्मद बिन सलमान के युवराज बनने से पहले भी सऊदी अरब एक दमनकारी देश था, लेकिन उनके सत्ता में आने के बाद दमन में एक अभूतपूर्व तरीके से तेजी आ गई है। इसीलिए जो कोई भी सरकार की आलोचना करता है या अपने अधिकारों की रक्षा की कोशिश करता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे गंभीर यातनाएं दी जाती हैं और लंबे कैद में उसे डाल दिया जाता है। पिछले 2 वर्षों के दौरान आले सऊद शासन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी की छाया में आलोचकों और कार्यकर्ताओं के दमन को तेज कर दिया है और इसने सऊदी अरब को मानवाधिकारों के सबसे खराब उल्लंघनकर्ताओं में से एक बना दिया है। सऊदी अरब में अतीत से ही दमन चला आ रहा था, लेकिन सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के कार्यकाल के दौरान ये एक अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा। ऐसे में जो भी उनकी नीतियों का विरोध करता तो उसे दमन और प्रताड़ना का शिकार बनाया जाता। اس آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ دمن، نظر بندی اور منمانی پھانسی کی نیتیوں کا شکار صرف سعودی جنتا ہی نہیں بلکہ اس کھیتر اور دنیا میں لاکھوں انیہ لوگ بھی ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے سعودی عرب سے پیڑت ہیں۔ پیٹرو ڈالر کی نیتیاں اور یمن میں لاکھوں نردوش لوگ سعودی شاسن کے ہستکشیپ اور آکرمکتا کی قیمت چکا رہے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
افغانستان میں آتنکوادی گتیویدھیوں کا جائزہ لے رہے ہیں رویش زیدی۔
حال ہی میں داعش نے کچھ تصویروں کو پرکاشت کیا ہے۔ یہ فوٹو ایک ہفتے پہلے کی ہے جب کابل میں تعینات پاکستان کے راجدوت پر فائرنگ کی گئی تھی۔ اس حملے میں دوتاواس میں تعینات ایک سرکشا کرمی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا پاکستانی راجدوت کی رکشا کی، جس میں سرکشا کرمی گمبھیر روپ سے گھائل ہو گیا۔ اسی دن کابل کے ایک دوسرے علاقے میں گلب الدین حکمت یار کے نیتتو والے سنگٹھن حزب اسلامی کے مکھیالے میں موجود ایک مسجد پر آتم گھاتی حملہ ہوا۔ گلب الدین حکمت یار نے پچھلے دنوں حملہوروں کی پہچان بتاتے ہوئے کہا کہ حملہوروں کے پاس سے داعش کا جھنڈا ملا ہے۔
تحقیقات ابتدائی نشان بھی دے۔
حکمت یار کہتے ہیں کہ آرمبک جانچ میں پتا چلا ہے کہ حملہ کرنے والے دونوں آتنکوادیوں کا سمبندھ تاجکستان سے تھا، جن کا داعش سے سمبندھ تھا اور داعش نے ہی اس حملے کی یوجنا بنائی تھی۔ بتا دیں کہ گلب الدین حکمت یار کے پاس پورو سوویت سنگھ اور امریکہ کے ساتھ یدھ کا انوبھو ہے۔ حالیہ حملے میں بال بال بچنے کے بعد ایک دن پہلے ہی انہوں نے اپنی پارٹی کے سدسیوں کو ہائی الرٹ رہنے کا آدیش دیا ہے۔
از متحدین حزب اسلامی،
حکمت یار اپنے سنگٹھن کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سب کو ایک نئے یدھ کے لیے تیار رہنے کا آدیش دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سب پر اتنا بھروسہ ہے کہ دیش سے غداری کرنے اور دیش کو بیچنے والوں کو اپنے سنگھرش سے آپ اکھاڑ پھینکیں گے۔ پچھلے ایک ہفتے میں سمنگان، بلخ سمیت کئی علاقوں میں ہونے والے آتنکی دھماکوں نے ایک بار پھر افغانستان میں موجود اشانتی کو سنچار مادھیموں کی خبروں کی سرخیاں بنا دیا ہے۔ ساتھ ہی ایک بار پھر دشمنوں کے لیے اس دیش میں ہستکشیپ کرنے کے مارگ کو پرشست کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ چار مہینے پہلے کابل میں ڈرون حملہ کر کے اس میں ایمن الزواہری کو مار گرانے کا دعویٰ کرنے والے امریکہ کو اس حملے کے بعد طالبان کی کڑی پرتکریا کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ طالبان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ امریکہ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ جب چاہے افغانستان میں کہیں بھی حملہ کر دے، لیکن اس بیچ ایک بار پھر امریکہ نے افغانستان پر حملے کی چیتاونی دے ڈالی ہے۔ جبکہ واستوکتا یہ ہے کہ پچھلے دو دشک میں جب سے امریکہ کے بھاری قدم افغانستان کی دھرتی پر پہنچے ہیں تب سے اب تک دسیوں آتنکوادی گٹ افغانستان میں پلے بڑے ہیں۔ وہیں اس بات میں بھی اتنی سچائی ہے کہ امریکہ نے ان ورشوں میں ہمیشہ جس آتنکواد سے مقابلے کے نام پر افغانستان پر حملے کیے ہیں، اسی آتنکواد کے افغانستان میں پھلنے پھولنے کا مکھ ذمہ دار امریکہ ہی ہے۔ ایک بار پھر امریکہ افغانستان واپس لوٹنا چاہتا ہے اور اس بار بھی وہ آتنکواد سے مقابلے کے نام پر واپسی کی یوجنا بنا رہا ہے۔ کابل سے IRIB کے سمواددتا بہنام یزدانی کی رپورٹ۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ گجرات میں بی جے پی نیتا پٹیل نے ایک بار پھر مکھیہ منتری پد کی شپتھ لے لی ہے۔ بیورا دے رہے ہیں دلی سے شمشاد کاظمی۔
گجرات میں ایتہاسک جیت کے بعد بھاجپا کے ورشٹھ نیتا اور گجرات کے مکھیہ منتری رہے بھوپیندر پٹیل نے لگاتار دوسری بار آج مکھیہ منتری کے روپ میں شپتھ لی۔
ہوں بھوپیندر رجنی کانت پٹیل، ایشورنا نامے سوگند لوں تھوں کے۔
वे गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने। गांधी नगर में आयोजित एक विशेष समारोह में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ 16 अन्य कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है, जिनमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं। इस नए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय एवं जातीय संतुलन को बनाए रखा गया है। 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, जिसमें भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की थी, भूपेंद्र पटेल ने नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद भाजपा की विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को एक बार फिर नेता चुना गया था, जिन्होंने राज्यपाल से भेंट करके राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था। ज्ञात रहे कि 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में भाजपा ने इस बार 156 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। आज तक गुजरात में किसी भी दल ने इतनी सीटें प्राप्त नहीं की थी। भाजपा ने गुजरात में लगातार 7वीं बार जीत दर्ज कराई है। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, भाजपा की इस जीत पर कहा,
लगातार 27 साल तक लोगों की सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से उन्होंने गुजरात की विकास यात्रा शुरू की।
2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 77 सीटें प्राप्त करने वाली कांग्रेस इस चुनाव में 17 सीटों पर सिमट गई, जबकि आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा सीटें प्राप्त करके अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। कांग्रेस से भाजपा में गए युवा नेता हार्दिक पटेल को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। उन्होंने इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि विधायक की भूमिका मुझे निभानी है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा।
विधायक की भूमिका मुझे निभानी है, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको भी निभाएंगे।
शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सऊदी अरब के दौरे और इससे अमेरिका को पहुंचने वाले सदमे की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार को 3 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे, जहां किंग खालिद एयरपोर्ट पर रियाद के गवर्नर प्रिंस फैसल बिन बंदर, विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान, रियाद में चीनी राजदूत और कई सऊदी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। शी जिनपिंग की 3 दिवसीय सऊदी अरब यात्रा में 2 शिखर बैठकें हुई। एक शिखर बैठक सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई, जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद रहे, और एक शिखर बैठक चीन और अरब देशों की हुई, जिसमें फारस खाड़ी के अरब देशों और उत्तरी अफ्रीका के अरब देशों के नेता शामिल हुए। शी जिनपिंग के दौरे पर सऊदी प्रेस एजेंसी ने लिखा कि चीनी राष्ट्रपति का ये 6 साल बाद दौरा हुआ है। SPA के अनुसार शी जिनपिंग ने कहा कि पिछले 32 वर्षों से दोनों देशों के बीच दोस्ती और भरोसे का रिश्ता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस दौरे की काफी चर्चा रही और इसे इस पहलू से खास तौर पर देखा जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए एक बड़ा धचका है।
The world order is witnessing a change like never before, and leading this change is China and its leader Xi Jinping. Beijing has found a new friend in what used to be United States' most reliable partner. We are talking about the West Asia, a region known for its fierce geopolitics and oil reserves, and China is eyeing at one particular ally of the U.S., Saudi Arabia. The two countries have a lot to offer. China is Saudi Arabia's largest trading partner. Riyadh is one of Beijing's largest suppliers of oil. Both regimes are deeply invested in building mega projects.
अमेरिका स्थित सऊदी राजनीतिक टीकाकार अली अल अहमद का कहना है कि चीन बड़ी चालाकी से कदम उठा रहा है.
I think China is really doing a very smart move here by encroaching into what we can call American protectorate. The Gulf regimes survive owe their survival and current power to the United States, who have since the 1930s provided military support and protection. We hear this every year from American officials, including the Biden administration's officials. So they ignored an important part, which is the economy. China now is the number one trading partner, not only of Saudi Arabia, but of all the other countries and many countries in the Arab world, because the United States has very limited view of the region, and they maybe focus on selling arms and pushing for the for an interest of one or two countries, leaving the peoples of the region to deal with others, pushing and forcing them. And that's what's happening. China now is taken over economically.
सऊदी अरब और चीन की कंपनियों ने बुधवार शाम 33 से 34 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. ये समझौते सऊदी अरब के निवेश मंत्री की मौजूदगी में हुए. ये समझौते ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, क्लाउड सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, मेडिकल इंडस्ट्रीज और हाउसिंग के क्षेत्र में हुई. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी लगातार बढ़ा है. 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार 304 अरब रियाल का हुआ और 2022 की तीसरी तिमाही में दोनों देशों के बीच व्यापार 103 अरब सऊदी रियाल का हुआ. वहीं अरब देशों और चीन के संबंधों की बात की जाए तो वर्ष 2021 में चीन और अरब देशों के बीच 330 अरब डॉलर का साझा व्यापार हुआ, जो पिछले वर्ष के मुकाबले में 37% अधिक था. फार्स खाड़ी के देशों के शिखर सम्मेलन में ऊर्जा से लेकर सुरक्षा और निवेश में करीब 29 अरब डॉलर के समझौते की बात पहले ही कही जा रही थी. रियाज में एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि वो अरब और फार्स खाड़ी के देशों से संबंध और मजबूत करना चाहते हैं. फ्रांस 24 टीवी चैनल के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एडिटर फिलिप टर्ल कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए सऊदी अरब अब नए गठबंधनों के बारे में सोच रहा है.
दिस इज अ वे ऑफ सऊदी अरेबिया सीकिंग न्यू अलायंसेस विद अदर कंट्रीज आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. इट सीज दैट द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन is in a flux situation at the moment. It's not settled, so therefore it sees this as an ideal time to strike up new relationships with other countries or improve their relationships with other countries.
Vish Darpan. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण. हर हफ्ते सोमवार को
चीनी राष्ट्रपति के सऊदी अरब दौरे से अमरीका की चिंता काफी बढ़ गई है, जिसे उसने जाहिर करना भी शुरू कर दिया। बुधवार को व्हाइट हाउस ने कहा कि शी जिनपिंग की सऊदी अरब यात्रा इस बात की निशानी है कि चीन दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मगर इससे पश्चिमी एशिया के बारे में अमरीका की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि शी जिनपिंग की यात्रा चौंकाने वाली नहीं है, मगर अमरीका इलाके में अपनी साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस यात्रा को एक और दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग और तेल की कीमतों को लेकर चल रही उठापटक को देखते हुए अलग तरह से हालात बन गए हैं, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सऊदी अरब के दौरे से तेल की मार झेल रहे अमरीका की चिंता बढ़ सकती है। अमरीका और सऊदी अरब का तेल के बदले सुरक्षा पर आधारित लगभग 7 दशक पुराना रिश्ता हाल के दिनों में यूक्रेन की जंग और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर तनावपूर्ण रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ महीने पहले ये तक कह दिया था कि सऊदी अरब को तेल की कटौती के नतीजे भुगतने होंगे, लेकिन इसके बावजूद तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने सप्लाई कम करने के अपने फैसले में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। तेल की कम सप्लाई से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसका असर पश्चिमी देशों पर पड़ रहा है। साथ ही ये भी समझा जाता है कि तेल की बढ़ी कीमतों के चलते रूस पर आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद खरीद जारी है, जिससे उसे यूक्रेन की जंग जारी रखने के लिए धन मिल रहा है। यूट्यूब चैनल फर्स्ट पोस्ट के सनबीर सिंह रनहोत्रा इस नई जियोपॉलिटिकल तस्वीर के आयामों के बारे में कुछ बिंदुओं का जिक्र करते हैं।
What does that indicate? It shows how West Asia has found an alternative to the United States. And this is a big alternative. For Arab nations, Xi Jinping is now a leader who enjoys the same stature as American presidents once did. In fact, Saudi Arabia has organized a reception way grander than what was put together for Joe Biden in June. But why is Saudi Arabia rolling out such a grand red carpet for Xi Jinping? Why do Arab nations, especially Saudi Arabia, consider ties with China so special, despite repeated protests by the US? Why is West Asia ready to dump US for China? The China-Arab relationship is a cash-rich one. China's trade relationship with Saudi Arabia alone is worth $87.3 billion as of 2021. That figure represents a 39% increase from 2020. So, China-Saudi ties are growing, and they're growing fast. The volume and worth of Saudi-US trade ties have been shrinking rather rapidly. Total US-Saudi trade shrank from some $76 billion in 2012 to $29 billion last year.
ये भी खबर है कि चीन सऊदी अरब को इस बात के लिए भी राजी करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ व्यापार के लिए भुगतान की मुद्रा डॉलर के बजाय युआन यानी चीनी करेंसी हो। सऊदी अरब सहित कई अरब देश जो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा करते थे, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लिबनान और कई अन्य देशों में अमेरिका की नाकामी देखने के बाद अपनी स्थिति में बुनियादी बदलाव लाने पर मजबूर हुए हैं। अलग अलग गलियारे अलग अलग अंदाज से चीन सऊदी अरब रिश्तों में होते विस्तार को देख रहे हैं। पाकिस्तान के समा टीवी की एक रिपोर्ट का एक हिस्सा प्रस्तुत है।
ये दौरा आलमी सियासत में बहुत अहम है कि जब रियाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात में तनाव है, आलमी तवानाई की मंडी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार।
इसी तरह की बातें हिंदी मीडिया की रिपोर्टों में भी छाई रही।
अमेरिका का दुश्मन चीन अब उसके करीबी दोस्त के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सऊदी से अमेरिका के रिश्ते इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, ऐसे में जिनपिंग का यह दौरा अमेरिका की चिंता जरूर बढ़ा सकता है। जिनपिंग का यह दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब सऊदी अरब और अमेरिका के बीच एनर्जी पॉलिसी से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार मामलों को लेकर तनाव चरम पर है।
चीन चीनी राष्ट्रपति की सऊदी अरब यात्रा को लेकर भारत के परिदृश्य में भी एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल हुआ ये कि बाली में 15-16 नवंबर को हुई G20 की बैठक में हिस्सा लेने से पहले सऊदी क्राउन प्रिंस भारत के दौरे पर जाने वाले थे, साथ ही पाकिस्तान का दौरा भी उनके कार्यक्रम में था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी। अचानक 12 नवंबर को खबर आई कि सऊदी क्राउन प्रिंस भारत नहीं जाएंगे। कहा गया कि क्राउन प्रिंस का ये दौरा अब बाद में होगा। इसी बीच खबर आई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो यहीं से ये अटकलें शुरू हो गई कि क्या भारत और सऊदी अरब के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसी साल जून महीने में बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम को लेकर एक बड़ा शर्मनाक बयान दिया था, जिस पर सऊदी अरब ने आधिकारिक रूप से कड़ी आपत्ति जताई थी। इसे लेकर दुनिया भर के इस्लामिक देशों ने विरोध जताया था, मगर जाने माने तेल विशेषज्ञ और सत्ताधारी भाजपा से जुड़े नरेंद्र तनेजा ऐसा नहीं मानते कि सऊदी अरब और भारत के बीच किसी किस्म का तनाव है। वो कहते हैं कि क्राउन प्रिंस का नवंबर में भारत दौरा टलना सामान्य सी बात थी। चीन के राष्ट्रपति के सऊदी अरब दौरे को अमेरिका के आईने में देखना चाहिए, न कि भारत के आईने में। चीन को हथियार बेचना है और सऊदी अरब को इसकी जरूरत है। चर्चा के अलग अलग आयामों से एक बात साफ है कि पूरी दुनिया और विशेष रूप से पश्चिमी एशिया के ऊर्जा संपन्न इलाके में अमेरिका की दशकों पुरानी पैठ समाप्त हो रही है, क्योंकि खुद अमेरिका की सुपर पावर वाली हैसियत समाप्त हो रही है। इस हैसियत को इस समय यूक्रेन जंग के स्तर पर चुनौती मिली और इससे पहले सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में चुनौती मिली। ईरान से तो पिछले 40 साल से अधिक समय से जारी मुकाबले में लगातार चुनौती मिल रही है और अमेरिका इस चुनौती में बार बार नाकाम हो रहा है। खुद अमेरिकी लेखकों और बुद्धिजीवियों के बीच ये चर्चा आम है कि पोस्ट अमेरिकन एरा या अमेरिका के पतन के बाद के दौर की शुरुआत हो चुकी है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम सेहत का राज। सेहत का राज।
दोस्तों, कार्यक्रम सेहत का राज के कन्या कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में हम बादाम और उसके पेड़ के बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों, हम आपको बादाम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रूनस डल्सिस है। इसको अंग्रेजी में एलमंड कहते हैं। इसको कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स या सूखे मेवों में बादाम को शामिल किया गया है। बादाम को कच्चा, भूनकर या सूखे रूप में प्रयोग किया जाता है। अपनी औषधीय विशेषताओं के कारण बादाम पूरी दुनिया में ध्यान का केंद्र बना हुआ है।
बादाम पोषक तत्वों का खजाना है। बादाम को कई अन्य प्रकार से प्रयोग करते हैं। मिठाइयों में से सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन स्थानों पर बादाम पैदा होते हैं, वहां पर इनको कच्चा भी खाया जाता है। वैसे बादाम को मिठाइयों में डालकर खाने का भी प्रचलन रहा है। कुछ लोग बादाम को रात में भिगोकर सुबह में उसका छिलका उतारकर प्रयोग करते हैं। बादाम का शेक बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
वनस्पति विज्ञान के अनुसार बादाम एमीगैडलस परिवार से संबंधित एक नट है। इसको कठोर छिलके वाले फल के रूप में भी देखा जाता है। बादाम सामान्यतः 2 परतों में छिपा हुआ होता है, एक उसके ऊपर का कठोर छिलका और दूसरे उसके ऊपर भूरे रंग का पतला सा छिलका होता है। बादाम के पेड़ गर्म और शुष्क जलवायु में जीवित रहते हैं। शायद यही कारण है कि पूरे मेडिटेरेनियन क्षेत्र में बादाम प्रचुरता से पाया जाता है।
कहते हैं कि बादाम को हजारों वर्षों से प्रयोग किया जा रहा है। बादाम को मूलतः केंद्रीय एशिया और ईरान का फल कहा जाता है। ईरान के चार महल बख्तियारी खुरासान, फारस, केरमान, जंजान और पूर्वी अजरबैजान क्षेत्रों में बादाम की खेती की जाती है। आज बादाम दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है।
दुनिया में बादाम का सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका करता है, जिसके बाद स्पेन का नंबर आता है। विश्व की जरूरत का लगभग 80% बादाम अमेरिका में पैदा किया जाता है। अमेरिका के बाद फिर स्पेन, सीरिया, इटली और ईरान का नंबर आता है। ईरान के बादाम को बहुत ही स्वादिष्ट बताया जाता है। ईरान में पैदा होने वाले बादाम को व्यापक स्तर पर निर्यात भी किया जाता है।
मूल रूप से बादाम दो प्रकार का होता है, कड़वा और मीठा। वैसे बादाम का स्वाद तो मीठा नहीं होता, किंतु जो बादाम कड़वा नहीं होता उसको मीठा बादाम कहते हैं। कहते हैं कि मीठे बादाम की तुलना में कड़वे बादाम के भीतर अधिक औषधीय गुण होते हैं। इसी बादाम से रोगन बादाम तल्ख निकाला जाता है। इस तेल के बहुत से फायदे होते हैं। वैसे बाजार में रोगन बादाम में शीरीन भी मिल जाता है। हालांकि कड़वा और मीठा बादाम देखने में तो एक जैसा होता है, किंतु अंतर इनके स्वाद में होता है। इसकी पहचान रखने वालों का कहना है कि कड़वा बादाम दूसरे वाले बादाम की तुलना में कुछ अधिक गोल होता है।
भारत और पाकिस्तान, या यूं कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप में बादाम का प्रयोग बहुत ही प्राचीन समय से होता आ रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मेडिट्रेनियन क्षेत्र से निकलकर उत्तरी अफ्रीका और एशिया होते हुए अमरीका पहुंचा। बादाम शीरीन अर्थात मीठे बादाम की कई किस्में हैं, किंतु उनमें अमरीकी और ईरानी जाति वाले बादामों को अधिक महत्व हासिल है। बाजारों में अधिकतर अमरीकी और ईरानी बादाम पाए जाते हैं। ईरान में पैदा होने वाले बादामों में एक कागजी बादाम भी होता है, जिसका छिलका अधिक कठोर नहीं होता बल्कि नरम होता है। यह ईरान में पाया जाने वाला सबसे अच्छा बादाम माना गया है। यही वजह है कि ईरान में सबसे महंगा बादाम कागजी बादाम होता है। इसके छिलके को हाथ से बड़ी आसानी से हटाया जा सकता है।
बादाम को सेहत का खजाना बताया गया है। इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं। बादाम में कई प्रकार के विटामिन मौजूद होते हैं, जिसे विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B9 आदि। इसमें विटामिन ई भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बादाम में विटामिन B2 तथा कर्निटाइन की उपस्थिति के कारण ये दिमाग को मजबूत बनाने में मदद करता है और दिमाग के कामों को सुचारू रूप में चलाने में सहायक सिद्ध होता है।
बादाम की अहमियत को समझते हुए प्राचीन काल में माताएं बच्चों के खाने में इसका प्रयोग किया करती थीं। बादाम के प्रयोग से अल्जाइमर जैसी बीमारी के प्रभाव को किसी सीमा तक रोका जा सकता है। बादाम की एक विशेषता ये भी है कि वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल या HDL को बढ़ाता है और शरीर के भीतर के खराब कोलेस्ट्रॉल अर्थात LDL को कम करता है। ये प्रक्रिया हृदय रोगों को रोकने में मदद करती है।
जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर विटामिन ई पैदा नहीं कर सकता, इस काम में वो सक्षम नहीं है। विटामिन ई का अवशोषण पोषण के माध्यम से किया जाना चाहिए। बादाम विटामिन ई का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। बादाम में पाया जाने वाला विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट पैदा करता है। इनकी विशेषता ये होती है कि वे कैंसर को रोकने और आंखों के मोतियाबिंद से रोकने में मदद करते हैं। बादाम के भीतर मैंगनीशियम और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज मौजूद होते हैं। इसका मैग्नीशियम रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने और हृदय गति को बढ़ने से रोकने में बहुत ही मददगार होता है।
बादाम में पाई जाने वाली पोटेशियम की महत्वपूर्ण मात्रा ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करती है, साथ ही हृदय की कार्य प्रणाली में सुधार भी करती है। अपने भीतर उल्लेखनीय मात्रा में विटामिन, प्रोटीन और आयरन के कारण बादाम शरीर के लिए प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत की भूमिका भी निभा सकता है। बादाम में अधिक मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, यही कारण है कि इसको कैल्शियम का स्रोत भी कहते हैं। बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने में बादाम बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में फास्फोरस को बहुत ही उपयोगी माना गया है, ये हड्डियों को कमजोर होने से बचाए रखता है।
बढ़ती आयु में होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों को रोकने में भी इसको देखा गया है। चिकित्सकों का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान बादाम खाने से पैदा होने वाले बच्चे में एलर्जी का खतरा बहुत कम हो जाता है। बादाम में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये वो पदार्थ है जिसका प्रयोग आम लोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। उच्च क्वालिटी के मैग्नीशियम के सेवन से टाइप 2 मधुमेह को रोकने में सहायता मिलती है।
मस्तिष्क के विकास और तंत्रिकाओं के विकास में बादाम प्रभावी होता है। ये ड्राई फ्रूट को कार्बोहाइड्रेट और वसा का समृद्ध स्रोत माना गया है, जो सूजन को कम करते हुए रक्तवाहिकाओं को संतुलित करता है। बादाम में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बच्चों में आयरन, प्रोटीन, फाइबर, जिंक, विटामिन ई और विटामिन 2 की कमी को दूर करने के लिए रोजाना बादाम का प्रयोग करना चाहिए। इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये कमजोर बच्चों को ही नहीं शक्ति प्रदान करता बल्कि व्यायाम करने वाले भी इसका प्रयोग करके ऊर्जा हासिल कर सकते हैं।
बादाम से लाभ उठाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम रोज ढेर सारे बादाम खाना शुरू कर दें। चिकित्सकों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 4 या 5 बादामों का प्रयोग करता रहे तो उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। बादाम की एक विशेषता ये भी है कि वो आंतों के भीतर स्वस्थ बैक्टीरिया बनाने में सहायता करता है। इसके भीतर रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। इसकी एक अन्य विशेषता पेट के अल्सर को ठीक करने में सहायता प्रदान करना है। हालांकि बादाम में उच्च स्तर की कैलोरी होती है किंतु वजन घटाने में ये बहुत अच्छा साबित होता है। जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं उनको बादाम का प्रयोग करना चाहिए।
अगर बादाम का प्रयोग सुबह नाश्ते में किया जाए तो ये भूख को कम करता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बादाम को कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग बादाम को दूध में मिलाकर इसका शेक बनाते हैं, कुछ लोग बादाम को कच्चा खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ अन्य इसको भिगो कर खाते हैं। जानकारों का ये कहना है कि सूखे हुए बादाम के प्रयोग के स्थान पर अगर इसको भिगो कर प्रयोग किया जाए तो ये अधिक लाभ पहुंचाता है। इसके लिए रात के समय बादाम के कुछ दानों को पानी में भिगो दिया जाता है। सुबह उठकर बादाम के छिलके को उतार लेते हैं और फिर उसे खा लिया जाता है। इस प्रकार के बादाम को शहद के साथ भी खाया जा सकता है।
इसके खाने का एक तरीका ये भी है कि रात में भीगे हुए बादाम को सुबह पत्थर में घिस कर खाया जाए, जिससे दिमाग को ताकत मिलती है और याददाश्त मजबूत होती है। इस प्रकार से बादाम प्रयोग करके दिन भर काम करने की ऊर्जा भी इससे हासिल होती है। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बादाम को हर आयु वर्ग के लोग प्रयोग कर सकते हैं, किंतु बच्चों को इसे सीमित मात्रा में ही देना चाहिए। बहुत से लोग बादाम का शरबत पीना पसंद करते हैं। इसका तरीका ये है कि पहले बादाम को बारीक पीस लिया जाए, बारीक पीसने के बाद इसको दूध में मिलाते हैं, फिर शक्कर या शहद डालकर इसका सेवन किया जाता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. شروتاؤ ابھی آپ سن رہے تھے ساپتاہک کاریکرم صحت کا راز, اور اب سمے مکھیہ سماچاروں کی سارانش کا. ودیش منتالیہ کے پروکتا ناصر کنانی نے چینی راشٹرپتی کی اپستھتی میں فارس کھاڑی کی سہیوگ پریشد کی سنیکت وگت کی برتسنا کی ہے. ودیش منتالیہ کے پروکتا نے آج ساپتاہک پریس کانفرنس میں پترکاروں کے سوالوں کا جواب دیا اور کہا کہ فارس کھاڑی کی سہکارتا پریشد کی سنیکت وگت کی ہم برتسنا کرتے ہیں, اور ایران کے شانتیپورن کاریکرم سے سمبندھت جو باتیں اس وگت میں بھی تھیں اسے رد کرتے ہیں. سعودی عرب کی اگوائی میں فارس کھاڑی کی جو سنیکت وگت جاری کی گئی اس میں ایران کے تین دیپوں کے بارے میں بھی دعویٰ کیا گیا تھا. ودیش منتالیہ کے پروکتا نے کہا کہ اس سمبندھ میں دعوے کو ہم ایران کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ مانتے ہیں. اسی پرکار انہوں نے کہا کہ ایران پرمانو سمجھوتے اور انتراشٹریہ قانونوں کے پرتی کٹیبدھ ہے, اور اس چیز کی اندیکھی کیے جانے کو ہم رد کرتے ہیں. ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ نے آرتھک سہیوگ سنگھٹن ایکو کے وستار کی تیسویں ورشگانٹھ کے اپلکش میں آیوجت سماروہ میں کہا کہ اسلامی گنراج ایران کی نظر میں اس سنگھٹن کا مہتوپورن استھان ہے, اور یہی کارن ہے کہ تہران نے ہر موقع پر ایکو کے سدسیوں کے ساتھ سہیوگ کے وستار پر بل دیا ہے. شہید حسین زینال زادے اور شہید دانیال رضا زادے کی ہتیاری آتنکی کو سوموار کی صبح سارجنک استھان پر لوگوں کے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا گیا. امریکہ کے پورو ودیش منتری مائک پومپیو نے ایک ساکشاتکار میں چینی راشٹرپتی کی حالیہ سعودی یاترا کو امریکہ کی غلط نیتیوں کا پریڑام بتایا ہے. مائک پومپیو نے چینی راشٹرپتی شی جن پنگ کی ریاض یاترا کے سمبندھ میں کہا, جب ہم اپنے دوستوں اور بھاگیداروں کے ساتھ نہیں رہیں گے اور انہیں پریشان کریں گے, اور شی جن پنگ جیسے اپنے دشمنوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو ہم اس پرکار کے ویوہار کے ساکشی رہیں گے. تو شوتاؤ, اسی کے ساتھ ہمارا یہ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے. شبھ کامناؤں کے ساتھ آپ سے ودا چاہتے ہیں. خدا حافظ.